गोयनका हाउस से अनुभव वापस अपने घर आ चुका था। घर आते ही उसने देखा कि आकाश जी ने उसके चारों कंपेटिटर्स यश, कोमल, राहुल और दृष्टि को घर बुला रखा था। वो चाहते थे डिनर के बहाने अनुभव उनसे मिल ले। आकाश जी हमेशा से अनुभव और उन चारों के बीच एक हेल्दी रिलेशन चाहते थे, पर उनकी कोशिश नाकाम रही। मित्तल फैमिली में हर कोई मेंबर दृष्टि, यश, राहुल और कोमल को पसंद करता था और उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, लेकिन अनुभव को वो कभी पसंद नहीं आए। अनुभव के चलते अंशिका भी उनसे ज्यादा जुड़ नहीं पाई, लेकिन अनुभव की तरह उसे उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। जैसे ही अनुभव की नज़र उन पर पड़ी तो वो वापस अपने कमरे में जाने लगा। उसे रोकते हुए आकाश जी ने कहा, अनुभव बेटा कहाँ थे तुम? मैं कब से कॉल लगा रहा था, तुमने कोई जवाब भी नहीं दिया और अब बिना डिनर किए ऊपर जा रहे हो। अनुभव उनके पास गया और जवाब देते हुए कहा, किसी काम से बाहर गया था पापा, खाना भी खा चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करते हैं। अनुभव का एटीट्यूड देखकर यश, दृष्टि, कोमल और राहुल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अनुभव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो चारों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। आकाश अनुभव को कुछ कहता उससे पहले यश बोल पड़ा, आओ ना अनुभव, काफी टाइम बाद मिले हैं, खाना हो गया तो क्या हुआ, डिजर्ट एंजॉय कर सकते हो या हमारे साथ बैठकर हमें ऐसे ही ज्वाइन टू कर ही सकते हो। यश बिल्कुल ठीक कह रहा है अनुभव, अगर तुम यहाँ से बिना बात किए गए तो हमें यही लगेगा कि जैसे बचपन में तुम हमें पसंद नहीं करते थे, वैसे ही बड़े होने के बाद भी तुम्हें हमसे प्रॉब्लम है। दृष्टि ने यश की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे भी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसे पता था कि यश की कौन सी बात का क्या मतलब होता है। पहले स्टडी के चलते तो बाद में जॉब के चलते अनुभव घर से दूर ही रहा था। वो उन चारों से काफी सालों बाद मिल रहा था और उनकी बातों से अनुभव समझ गया था कि भले ही टाइम बीत गया हो, ना तो उसके दिल में उनके लिए नाराजगी कम हुई थी और ना ही उन चारों का बर्ताव अभी भी बदला था। वो आकाश जी के सामने खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते और अनुभव को नीचा। यश और दृष्टि जो कर रहे थे वो कोमल और राहुल को भी समझ आ रहा था। राहुल अपनी जगह से खड़ा हुआ और पास वाली चेयर पर बैठने लगा। उसने अनुभव की तरफ इशारा करके कहा, आओ ना अनुभव, तुम मेरे साथ बैठो, याद है बचपन में हम दोनों ही सबसे ज्यादा साथ खेला करते थे? हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, बचपन में बच्चा था तब समझ नहीं आता था कि कैसे तुम खुद ही गिर जाते थे और सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देते थे। अब मैं बेवकूफ़ नहीं रहा और ना ही तुम लोगों के इमोशन के जाल में फंसने वाला, अनुभव ने राहुल की तरफ देखकर अपने मन में कहा। यश, दृष्टि और राहुल अनुभव को वहां बैठने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ कह चुके थे, लेकिन अब बारी कोमल की थी। वो उनकी कॉपी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उन तीनों को कहा, कोई बात नहीं, अनुभव हमारे साथ नहीं बैठना चाहता, इट्स ऑल राइट, अनुभव तुम थक गए होंगे, जाकर रेस्ट कर लो, वैसे भी कुछ दिनों बाद हमें साथ ही काम करना है, एक साथ रहना है, बात तो तब भी हो सकती है। उन चारों की बातों का कुछ और ही मतलब निकल रहा था। साफ समझ आ रहा था कि अनुभव उनके साथ बैठना नहीं चाहता। आकाश जी ने अनुभव की तरफ तीखी नजरों से देखा और कहा, अनुभव, अगर कोई प्यार से इतना कहे तो आ जाना चाहिए। अनुभव ने वाणी की तरफ देखा, जिसने इशारे से वहां बैठने के लिए उसे इंसिस्ट किया। सबके इतना कहने पर अनुभव को डाइनिंग टेबल पर आना ही पड़ा और वो वाणी के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गया। मैं चाहता था कि काम करने से पहले तुम पांचों एक दूसरे को अच्छे से जान लो, इतने टाइम बाद मिल रहे हो, रुको मैं तुम चारों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। अनुभव को तो तुम जान ही गए होंगे, बाकी अनुभव ये। आकाश जी उन चारों का इंट्रोडक्शन अनुभव से करवा रहे थे, लेकिन तभी अनुभव ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है पापा, मैं इन्हें देखते ही पहचान गया था, वो राहुल है, वो दृष्टि, कोमल और यश। अनुभव ने हर एक की तरफ इशारा करके कहा, उसने बिल्कुल ठीक पहचाना था, वो चारों अनुभव के ही हमउम्र थे। राहुल उनमें हाइट में सबसे लंबा और फिट लड़का था। वो दिखने में काफी हैंडसम भी था। उसके डस्की फेस पर हल्की दाढ़ी, जेल से सेट किए हुए बाल थे। उसके पास में यश बैठा था, जिसका रंग गेहुआ था और वो क्लीन शेव रखता था। उसकी हाइट अनुभव के बराबर थी और उसे बॉडी बनाने का ज्यादा शौक था, इसलिए उसकी बॉडी काफी अच्छी थी। दूसरी तरफ कोमल और दृष्टि बैठी थी। कोमल नॉर्मल लड़कियों से थोड़ी मोटी थी और उसका रंग हल्का सांवला था। लंबी हाइट होने की वजह से वो दिखने में अट्रैक्टिव लगती थी और उसने खुद को काफी अच्छे से मेंटेन भी कर रखा था। उसके पास में दृष्टि बैठी थी, जो दुबली पतली और गोरी लड़की थी। उन चारों की परवरिश भी काफी अच्छे से हुई थी, ऊपर से वो स्टडीज में भी अच्छे थे। उन्हें पता था कि एक दिन उनमें से कोई एक मित्तल एम्पायर का सीईओ बन सकता था, तो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को काफी अच्छे से बिल्ड कर रखा था। सबसे इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद अनुभव कुछ देर और वहीं पर बैठा रहा। वो कोई बात नहीं कर रहा था, बस उन सबकी बातों पर हाँ या ना में जवाब दे रहा था। जब डिनर खत्म हो गया तो अनुभव वहां से चला गया। आकाश जी से मिलने के बाद दृष्टि, राहुल, यश और कोमल भी अपने घर को जाने के लिए निकले। वो आकाश जी की भेजी हुई कार में थे। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था जबकि वो चारों पीछे की सीट पर थे। राहुल ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, देखा तुमने, वो अनुभव आज भी बिल्कुल नहीं बदला। वो हमसे उतनी ही नफरत करता है जितनी बचपन में करता था। नफरत करना तो बनता है, आखिर हम उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं और एक दिन उसकी पोजीशन ले लेंगे, पर क्या फर्क पड़ता है। वो ऐसे ही नफरत करता रह जाएगा और हम उसके हाथ से उसका सब कुछ छीन कर ले जाएंगे। दृष्टि ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, जिस पर यश और कोमल हंस पड़े। कुछ देर चुप रहने के बाद कोमल ने कहा, वैसे तो ये बात पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आकाश अंकल ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है तो वो हमसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। अनुभव की शादी हो चुकी है, वो भी गोयनका एम्पायर के मालिक नवीन गोयनका की बेटी शगुन गोयनका से। हाँ, वो लड़की अपने बाप की इकलौती औलाद है, फिर क्या फर्क पड़ता है अनुभव को कुछ मिले भी या नहीं। आकाश अंकल उसे कुछ नहीं देंगे तो भी उसे अपने ससुर की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। चलो, इसी बहाने हमें गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, यश ने जवाब दिया। आपस में बातें करते हुए वो चारों अपने अपने घर को पहुंच चुके थे। अब वो अनाथ आश्रम में रहने के बजाय अपने अपने फ्लैट में रहते थे। इंटर्नशिप के चलते उन्हें भी काफी अच्छी जॉब मिली हुई थी। किसी ने अपना फ्लैट ईएमआई पर खरीद रखा था तो कोई फिलहाल के लिए रेंट पर रहता था। कुल मिलाकर उन चारों की लाइफ भी अच्छे से बीत रही थी। अगली सुबह शगुन तैयार होकर ऑफिस पहुंची। अनुभव के घर पहुंचने के बाद से लेकर अब तक उसकी अनुभव से फोन या मैसेज के जरिए कोई बात नहीं हुई थी। वो बस अपने कामों में लगी थी और अनुभव से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। शगुन काफी हद तक उसमें कामयाब भी हो गई थी। उसने एक नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनाई थी और ऑफिस पहुंचते ही वो उसे लेकर सीधा शुभ के केबिन में घुसी। शगुन को अपने केबिन में देखकर शुभ भी काफी खुश हुआ। एक्चुअली शगुन की आदत थी कि आते ही वो सीधा अपने केबिन में घुसती थी और आज वो शुभ के पास आई थी।
शुभ को देखते ही शगुन ने मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश किया और सामने की चेयर पर बैठते हुए कहा, योर मैनेजर एट वर्क सर, मैंने प्रेजेंटेशन बना ली है एंड आई होप ये आपको पसंद आ जाए। शगुन फुल ऑन वर्क के मूड में लग रही थी। काफी टाइम बाद शुभ को एहसास हुआ कि वो पुरानी शगुन से मिल रहा है, जो अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड है और शुभ को भी अच्छा खासा इम्पोर्टेंस दे रही है। शुभ ने मुस्कुराकर जवाब में कहा, एज ऑलवेज मैडम, आप अपना काम बेस्ट करती हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे पसंद नहीं आएगा। वैसे आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। शगुन ने शुभ की तरफ हैरानी से देखा और जल्दी से कहा, तुम्हें पता है ना, आई हेट सरप्राइज, प्लीज मुझे जल्दी बताओ इससे पहले कि मेरे पेट में दर्द होने लगे। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुमसे जुड़ा है तो तुम्हें बताना ही है। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, या यूं कहूँ कि एक बेटी के दिल की बात उसके डैड को बिना कहे पता चल गई, शुभ ने जवाब दिया। वो आगे कुछ कहता उससे पहले शगुन ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सी बात मेरे बिना कहे पापा को पता चल गई? कहीं उन्हें हमारे रिलेशन का तो पता नहीं चल गया? शगुन ने अचानक ये कह तो दिया था, लेकिन फिर उसे भी टेंशन होने लगी कि कहीं मिस्टर गोयनका को उसके और शुभ के रिलेशन का पता तो नहीं चल गया। ऐसा हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इससे पहले कि शगुन ओवरथिंकिंग करके अपना दिमाग खराब करती, शुभ जल्दी से बोला, आई विश कि ऐसा ही होता, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ और हुआ है। एक्चुअली तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम मुंबई आओ और हमारा जो प्रोजेक्ट उनके साथ होने जा रहा है उसे तुम ही लीड करो। शगुन, मुझे लगता है इस बहाने वो तुम्हारी पोटेंशियल को चेक करना चाहते हैं कि तुम गोयनका का एम्पायर संभाल पाओगी या नहीं। ये अच्छा मौका है, तुम उन्हें इम्प्रेस करो ताकि जल्द से जल्द तुम्हें तुम्हारा गोल हासिल हो और हम दोनों शादी कर सकें। लेकिन शुभ, मेरा मुंबई जाने का कोई मूड नहीं है। अगर पापा मेरा कोई टेस्ट लेते भी तो मुझे बता देते हैं, प्लीज़ तुम ही देख लो, मेरा मन नहीं है। शगुन ने तुरंत मना कर दिया, वो अनुभव के पास नहीं जाना चाहती थी। एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली तुम्हारे पापा ने शर्त ही यही रखी है कि तुम इस प्रोजेक्ट को हेड करो। मैं इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। शगुन, तुम अपनी पैकिंग करो और अपने पापा के साथ टाइम बिताने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम काम को भी पूरा टाइम दो, इसी बहाने तुम्हें उनकी याद भी नहीं आएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। अब कोई बहस नहीं और ना ही मना कहना है, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम दोपहर की फ्लाइट लेकर मुंबई पहुँच जाओ, शुभ ने सख्त शब्दों में जवाब दिया। शुभ ने शगुन से ज्यादा अपने बिजनेस को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। इस बार उसने शगुन को ऑर्डर देने के वे में कहा था तो शगुन का मन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शुभ को लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट के बहाने मिस्टर नवीन गोयनका शगुन को परख रहे हैं, इसलिए उन्होंने शगुन को चुना था, जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल उल्टी थी। नवीन गोयनका ने ये सब अनुभव के लिए किया था ताकि अनुभव शगुन के साथ रह सके और दोनों दूर रहते हुए एक दूसरे को मिस ना करें। शगुन अनुभव के प्लान से अनजान थी, इसलिए उसने शुभ की बात पर हामी भरी। उसने प्रेजेंटेशन को वहीं पर रख दिया था और वहां से मुंबई जाने के लिए अपने घर चली गई। आखिर उसे 3 महीने वहां बिताने थे और उसकी पैकिंग जो करनी थी।